বিনীতি অল্পজ্ঞ কিন্তু বিনয়ী মুনি মুক্ত পাতা। দৃষ্টান্ত কর্ম দল কো পল নে মিটাতা, ভাই অতা বিনয় কো তজ না কদাপি, সচ্চি সুধা সমঝ কে উসকো সদাই। বরসোঁ পড়া বহুত সা, তিন ঢের সারা জো অগ্নি সে ঝট জল বিনে দের সাধা। ত্যোঁ শীঘ্র হি ভবে ভবার্জিত কর্মে কুড়া, ধ্যান অগ্নি সে জল মিটে শুন ভব ভুলা। ইসে ধর্ম ধ্যান সে ওর ভগবান কি ভক্তি সে, ধর্ম করনে সে তপ করনে সে উপবাস করনে সে সংযম লেনে সে জন্ম জন্মান্তর কে পাপ ইস প্রকার জল জাতে হ্যাঁ, জিস প্রকার কে কূড়ে মে জিন্দগি কা কূড়া পড়া হুগা ওর ক্ষণ মাত্র মে বিধ্বংস হো জাতা হ্যায়। আপনে লিয়ে অগর আপনে লিয়ে সন্তান কি জানা জরুরত নেই হ্যায়, তো হমারে লিয়ে সংযম ধারণা করনা চাহিয়ে। সংযম মে হমারে পাপো কি নিদ্রা ভি হোগি, পাপ ভি কট জায়েঙ্গে ওর হমকো জিতনি সন্তান কি জরুরত উতনি সন্তান মিল জায়েগি, কোই পাপ নেই হোগা। লেকিন অগর হমনে পাপ কিয়া অস্পতাল গয়ে তো বো তো ভগবান্তর কে লিয়ে কূড়া ইকট্ঠা হো গিয়া, ভগবান্তর কে লিয়ে নরক নিগোদন কি গৃহস্থ বন গই, উসসে ছুটনে কি বড়ি কঠিন বাত হ্যায়। কেতে ভাই ঠিক হ্যায় পাপ তো কিয়া, যশোদা মুনিরাজ কে লিয়ে রাজা স্নেক নে সর্প তো ডাল দিয়া গলে মে, কে আব যে অভি নিকাল কে ফেঁক কে ভাগ যায়েঙ্গে, অভি রানী সে কহেঙ্গে কি দেখো তুমারি মুনি এসে হ্যায়, মগর মুনিরাজ তো স্থির হোক খড়ে হোক রয়ে গে। ওর জব ও রাজা সিরনেক চেলনা রানী কে সাথ যাতা হ্যায় ও দেখতা হ্যায় কি দেখো যে যোগীরাজ তো দেখে সে তেসে খড়ে হ্যায়, জিনকে শরীর কে উপরে চিটিয়ো কি গিনতি নেই হ্যায়, কিতনি চিটিয়ে শরীর মে চড় গই হ্যায়, কিতনি বেদনা কর রই হ্যায়। মুনিরাজ ধ্যান মে খড়ে হ্যায় তব গদগদ হো গিয়া, জিসকো সাথ মে নরক কি আয়ু বন গই তি, জিসকে লিয়ে তেতিস সাগর কি আয়ু বন্ধি থি। ওর জব ও রোতা হ্যায় জব উনকা আঙ্গ পৌঁছতা হ্যায় সব নিকাল কে অলগ করতা হ্যায় ওর আপনে করে হুয়ে কর্ম কো পশতাতা হ্যায়, তো উসকি 84,000 বর্ষ কি রয়ে গই আয়ু এ পহলে নরক কি। ইস প্রকার সে জো কুছ বন গয়া হ্যায় কসুর, উসকি তুম আলোচনা করো বিনতি করো সংযম ধারণ করো উপবাস করো, তুমারা ভি পাপ কট সকতা হ্যায়। ওর আগে আগে চল কি জিতনি সংস্কৃতি আপনি সন্তান হো বেটি বেটা সবকে লিয়ে এই শিক্ষা দেও কে আপনে লিয়ে খোটা কাম নেই করানা হ্যায়, আপনে লিয়ে এসা হি করানা হ্যায় কি জিসমে কি আপনি সংস্কৃতি নেই চাহিয়ে তো পুণ্য রহে, জিসসে ধর্ম রহে, জিসসে কি আপনা কল্যাণ হোবে। কেতে হ্যায় লোভ পাপ কা বাপ, সুনো ভাই লোভ পাপ কা বাপ হোতা হ্যায়, ইসকে লিয়ে ধ্যান সে দেও তুমারে ইসি উদাহরণ পে যা রহি হ্যায় যা বাত। লোভ পাপ কা বাপ বখানা ইয়া সব সুনতে আতে হ্যায়, উসকা এক অনুপম হম তুমকো দৃষ্টান্ত সুনাতে হ্যায়। एक विप्र के पुत्र बनारस से पढ़ करके आया था, चारों वेद पुराने अठारह और अठारह उठ याद कर लाया था, कंठ याद कर लाया था। तर्क द्वंद व्याकरण कोश का पूरा पंडित ज्ञानी था, वेद के ज्योति से साम्रोदक में और न जिसका साथी था। एक दिन नारियों बोली प्राणनाथ यहाँ आओ तो क्या क्या पल आए, काशी से मुझको जरा सुनाओ तो। बोला तर्क द्वंद व्याकरण सभी पर आया हूँ मैं, हुआ परीक्षा में उत्तीर्ण अब सबसे अब्बल नंबर पाया हूँ। कहा नारी ने ऐसा कहने से तो मैं नहीं मानूंगी, कौन पाप का बाप बताओ तब मैं पंडित जानूंगी। हमने ज्ञान नहीं रखा, हम पाप के पानी में तो बह गए। देखो लगी सिट बटाने पंडित जी ये तो पढ़ा नहीं मैंने, नहीं किसी ने मुझे सिखाया, बात नहीं पूछी तेने। बोली नारी इसे पढ़ो आओ, इसे पढ़ आओ, अब पीछे घर में आए रहना, पढ़ा पाप का बाप न जिसने वह पंडित किसने माना। सुन नारी की बात चली ब्राह्मण पने को विद्यालय में जाता है, किंतु मिलाना पढ़ाने वाला बिगने प्रदे बिंद प्रदेश हिमालय है, सारे सारे और गांव गांव में फिरता फिरता हारा है। एक दिन एक बड़ी चतुर बिश्या ने इसे निहारा है, और बड़ी बड़ी जागा गाँव वो, और उसके लिए कोई रोग पाप का बाप पढ़ाने वाला नहीं मिला। अब एक दिन बिश्या ने देखा, कर प्रणाम बोली बिश्या तुम्हें कौन कहाँ से आए हो, नौजवान सुंदर खूबसूरत क्या इतने घबराए हो। सुन बेस्या की बात विप्र ने किस्सा अपना बतलाया, सब कुछ पढ़ा न पढ़ा पाप का बाप उसे पढ़ने आया। कहा ने अच्छा बोली बेसा ये पुस्तक में मेरे पास पढ़ा दूंगी, आओ मेरे चौबारे पर अभी तुम्हें समझा दूंगी। पंडित जी बोले तू बेस्या में ब्राह्मण होकर तेरे घर नहीं आऊंगा, चाहे पढ़ू ना पढ़ू किंतु तुझसे शिक्षा नहीं पाऊंगा। पंडित जी ने ललकार दिया कि तुम क्या बात करती हो, मैं तेरे घर कैसे आऊं। पर बेस्या बोलती है नहीं नहीं आओ भगवान, 100 रुपये भेंट चढ़ाऊंगी, तुम्हें पढ़ाने से मैं पापन भी पवित्र हो जाऊंगी। सुनते बात 100 रुपये की पंडित जी का लालच मन में आया, खट 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 बेचा के चौबारे पे चढ़ कर जाया, 100 रुपये के लोभ में और जाकर पहुंच गई। ले अब मुझे पढ़ा दे जल्दी, बहुत समय न लगाऊंगा, और लेकर 100 रुपये की थैली में अपने घर जाऊंगा। 100 रुपया भी मिल जाएंगे और मैं तीसरे लोकपाल का बाप भी पा जाऊंगा। बेशक कहती है अजी जरा कुछ खा तो लो हो, पीछे में पर पढ़ा दूंगी। बेशक कहती कुछ खा पी ले फिर पढ़ाती हूं। 100 रुपये क्या दूं तुम्हें, 250 की भेंट चढ़ा दूंगी। हाय हाय के गए क्या मैं खाने को खाऊंगा। कहते अरे मैं क्या बेचा का खाना खाऊंगा, और धर्म कर्म से वंचित बिगड़ जाएगा, दुनिया में भ्रष्ट कहूंगा। बोली बेचा जरा नहीं डरो नहीं, सूखा सामान मंगा दूंगी। बेचा कहती महाराज आप मत घबराओ, मैं तुम्हें सूखा सामान मंगा देती हूँ, और आप बना कर पहले खा लो, तब मैं पीछे खाऊंगी। इतना बनाओ कि जिन्हें हम भी खा लाए। 250 का नाम सुनत लालच की झोली खोली है, अब बनाने लगा रसोई, तब बेचारी बोली है। काबली क्यों करते हो कट, क्यों करते हो कट, न्याय कर मैं ही रसोई बना दूंगी, और मैं हो जाऊं पवित्र, आज 500 की थैली चढ़ा दूंगी। कहती मैं 500 की थैली चढ़ा दूं, आप क्यों को हाथ मात भूंज रहे हो, मैं बना के रखे दे रही हूं महाराज जी। ज्ञान नैन फूट गए उनके, तृष्णा ओ अंधियारी छाई है, ओ करनी ने स्वीकार सोई, बेस्या ने तुरंत बना दी है। खाने को बैठा ब्राह्मण बेस्या ने परसी थाली है, अब 500 की थैली आ मिलने। सो जैसे हमारे जिस श्रावक भैया और बहने बफर में जाते नहीं, उन्हें की ऊपर से सुना रही मैंने, हाँ वही से तो सुनाई कि भाई रसगुल्ला धरे कहाँ है, और भर कर 1000 रुपये की थैली आगे डारी है। अब उसने 1000 की थैली धर दी। बोली बच्चा हाथ जोड़ कर एक बचन दे दीना जी, मेरे कल से 1 गिलास अपने मुख में ले लेना जी। अब कह रहे कि 1000 की थैली ले लो आप, 1 गिलास हमारे हाथ से तो ले लो। हैं कौन पाप का पाप आपको, जब यह सबक पढ़ा दूंगी, तब 1000 की थैली में चरणों में भेंट चढ़ा दूंगी। देख थैलिया 1000 की हो गई बृष्टमती पंडित जी की, और देखी नहीं बाप दादा ने भी 1000 की ये थैली। बाप मतलब ने तो कमू थैली नहीं देख दी 1000 की, चांदी के चलते भैया जब है नोट न चलते। हाँ ले थैली घर जाऊंगा, तरह देखना रे हर्षाएगी, प्राण नाच कह कर बोलेगी, भोजन विविध प्रकार के बनाएगी। कह रहे घर जाके जब नार खुशी हो जाए, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बने। मिली पढ़ाने बारी अरु यह है कैसा कैसी भोली भारी, जब तो भोली भारी है हम विद्या भी पढ़ा देगी, 1000 रुपये दे रही है। पढ़ा पाप का पाप और उल्टी रुपया देने वाली, गिरास उठाया बेचा ने तब पंडित जी ने मुँह फाड़ा है, और दे टुकड़ा बेचा ने मुँह में चाटा एक लगाया है। हैं देव पढ़ लो। भोली दुपड़ेरी बेचा मेरे थप्पड़ क्यों मारी है, तो करे लो पाप का बाप पड़ा रही, तो सबक तुम्हें नहीं आया है, बेशक कि हम लोग पाप को ना बाप पड़ा है और तुम्हें सबक नहीं आता है। धन के लालच में फंस कर खाया बेश्या का टुकड़ा है, यही पाप का बाप लोभ जो देना दुनिया ने देखा है। मक्खन ले इज्जत हुए बिप्रदिन आप और छिन में जानो, हाय हाय इस लोभ पाप का भी तो ये टुकड़ा मानो। जगत कुमत में देख नहीं रहे भोजन के आकांक्षा में, और बेस्या कैसा भोजन कर रहे घर घर से जा बफर में जाकर के। यह दृष्टांत आप लोगों को इस बफर पे से मैंने सुनाया है, और भाई बहन तुम्हें रोज न जाइयो कबू कबू भोजन करियो। कबू कबू चली गई रोज न जाओ करे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी।
पंडित श्री दौलत राम जी कृत छह डाला की अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से अंग्रेजी में अनुवाद की गई है, उमा स्टॉल पर उपलब्ध है। साथ ही एक आध्यात्मिक भजनों की कैसेट है, 25 रुपए में किताब और 15 रुपए में कैसेट उपलब्ध है। जो भी भाई बंधु लेना चाहें बाहर पंडाल के स्टॉल लगी हुई है, वहां से खरीद सकते हैं। अब मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि कृपया अपने धर्माशीष से हम सभी को कृतार्थ करें। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, जय बोले क्षमा सागर जी महाराज की जय।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें अपने शेष जीवन को कैसे अच्छा बना लेना है। जब भी हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तब जरूरी है कि जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है उनसे हम जुड़ें, या कि जो अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हैं उनसे हम निकटता बनाएं, उनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग हो, उनके गुणों का स्मरण हम करें, उनके गुणों का चिंतन करें, उनके जैसे गुण पाने के लिए हम भावना और साथ साथ पुरुषार्थ भी करें। भगवान जिनेंद्र हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने कि अपनी उस आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। आत्मा की सबसे श्रेष्ठ अवस्था तो वही है, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए, और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने वाले जो धर्म गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु, वे भी हमारे आदर्श हैं। वे स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हैं, और यदि हम उनके चरणों में बैठ जाएं तो हम भी उनको देख करके अपने जीवन में कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ग्रंथ तो हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले धर्म गुरु हमें शिक्षा के साथ साथ सहारा भी देते हैं। वे हम कहीं भटकने लगते हैं तो हमें संभाल लेते हैं, कहीं हम गिरने लगते हैं तो हमें उठा लेते हैं। इसलिए दोनों जरूरी हैं, शिक्षा के साथ साथ जो हमें संभाले और सहारा दे, ऐसे गुरु की उपस्थिति भी हमारे जीवन में हम महसूस करते रहें। और इसीलिए एक अच्छा जीवन बनाने वाले के लिए भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ गुरुजनों की सेवा और उनकी निकटता हासिल करने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। उनकी निकटता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम उनके निकट ही बैठे रहें, नहीं, उनकी निकटता का अर्थ यह है कि हम उन्हें अपने समीप महसूस कर सकें। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा हम महसूस करें। हम लोग गुरुजनों से निकटता हासिल करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ बस हासिल करते हैं, इसलिए कि मेरा काम बन जाएगा, या इसलिए कि चार लोगों के बीच मैं यश ख्याति प्राप्त कर पाऊंगा। तब वो गुरुजनों की निकटता हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाएगी। ये सावधानी रखने की आवश्यकता, जब भी कोई प्रक्रिया बताई जाती है तो प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछले दिनों समझा कि भगवान की पूजा करने के मायने ये नहीं है कि हम उनकी आरती उतार लें और आठ द्रव सजा करके, गा बजा करके और पूजा करके सोचें कि हमने पूजा कर ली। वास्तव में पूजा तो वो है जिसमें कि हम उनके जैसे बनने की भावना भरते हैं, रोज रोज एक एक कदम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी कषायों को, अपने राग द्वेष को निरंतर घटाते हैं, क्योंकि वीतरागता की पूजा वीतरागी होने के लिए है, राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं। इसी तरह गुरुजनों की निकटता हमें उनके जैसे गुण प्राप्त करने में मदद करे, ऐसा ना हो कि हम उनके माध्यम से भी अपने भौतिक सुखों को ही बढ़ाने के लिए और प्रयत्न करना शुरू कर दें। उनसे भी हम यही मांगने लगें, जैसे जनरली लोगों के मन में यह धारणा होती है कि महाराज जी का आशीर्वाद ले लो, पैर में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, तबीयत बिगड़ी है तो अच्छी हो जाएगी, दुकान ठीक नहीं चल रही है तो चलने लगेगी, घर में अशांति है तो अशांति हो जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं करना पड़े, वर्क विदाउट वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के पैसा मिलता रहे, इसी तरह से हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़े, सब कृपा से हमारे जीवन में घटित हो जाए। ये जो एक मानसिकता अपन लोगों की है, वो हमें गुरुजनों की निकटता मिल जाने के बाद भी हमें अच्छा जीवन नहीं बनाने देती। बस वो इन छोटी छोटी सी इच्छाओं की पूर्ति में हम लगे रहते हैं, जैसे हम संसार में लगे रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक धंधा पानी करते रहते हैं। तो इस तरह हमारी इच्छाएं और भौतिक सुख की जो हमारी चाहत है वो हम पूरी करते रहते हैं। अब हमें एक दूसरा तरीका मिल गया कि दुकान पे भी नहीं बैठना पड़ेगा, बस महाराज के पास बैठे रहो, कभी प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद दे देंगे तो काम बन जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और इसी वजह से हमें गुरुजनों की निकटता मिलने के बाद भी हम उनसे अपने आध्यात्मिक विकास की कोई चेतना विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हम उनसे अपनी और चीजें तो स्वार्थ तो अपने साध रहे हैं, नहीं तो इतना ज्यादा आज के समय में, तो पहले तो इतना रेयर था कि किसी दिगंबर मुनि का दर्शन होना बहुत दुर्लभ था, मीलों आदमी चला जाता था और वर्षों में उसको दर्शन होते थे। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास चले जाइएगा आपको आसानी से और साधु जनों के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी उतना ही अशांत है, उतना ही भौतिक लिप्साओं में ग्रसित है, उतना ही अपने जीवन को और वो पतन की तरफ ले जा रहा है। तब लगने लगता है कि इन सब की प्रेजेंस क्या चेंजेस ला पाई है। नहीं, चेंजेस हमें खुद लाना पड़ेंगे, अपने भीतर स्वयं परिवर्तन लाना पड़ेगा और वो निकटता हमारे जीवन को परिवर्तित करने में मदद करे तो ही वो निकटता सार्थक है। और इसी तरह तीसरे नंबर पर रखा है कि शास्त्र का स्वाध्याय, वो भी हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि थोड़े शास्त्र बांच ले में, चार जनों के बीच में पंडित कहलाएंगे, ज्ञानवान कहलाएंगे, चार लोग हमें मानेंगे। तो ये जो चार लोग हमें मानेंगे और हम ज्ञानवान कहलाएंगे, अगर ऐसी भावना से हमने ज्ञान हासिल कर भी लिया तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाए। रोज शास्त्र हम पढ़ते रहें और सिर्फ ये सोच करके कि मुझे बहुत भौतिक सुख मिल जाएंगे या कि मैं पंडित हो जाऊंगा, तो आजकल तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि शास्त्र का स्वाध्याय करके और 10 दिन एक शिविर में शास्त्र स्वाध्याय किया और बहुत सारी बातें लट ली और फिर उसके बाद पर्यूषण पर्व में, आजकल अपन को बिना सुने तो रहा नहीं जाता, तो अपनी आदत है कि अपन को सुनाने वाला कोई चाहिए, तो सुनाने वाले को आदत है कि सुनने वाला कोई चाहिए, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, दोनों जन की अच्छी ट्यूनिंग बन गई है। उनने कहा हम पर्यूषण में आपको बुलाएंगे, भले ही आपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन किया हो या नहीं किया हो, आपके पास 10 दिन के लिए 10 प्रवचन भर होना चाहिए बढ़िया से। तो वो तो बहुत सारी किताबें छपी हैं प्रवचन की और कैसेट निकले हुए हैं, उनको खूब आराम से सुन करके और रट करके पर्यूषण पर्व में, और फिर 10,000, 20,000 और 1,00,000 रुपए तक आराम से मिलते हैं, खूब बढ़िया से सम्मान होता है और समाज में उनकी वाहवाही होती है कि साहब क्या पंडित आए, पंडित जी आए थे और क्या बोले थे, और फिर बाद में 11वें दिन उन्होंने होटल में खाया था या कि घर में जाके रात में खाया था और आलू खाए थे, कोई भरोसा नहीं। उनके अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया उस ज्ञान से, ये अगर अपन देखेंगे तो मामला सिफर। ये इस तरह हम सच्चे देव गुरु शास्त्र तीनों के माध्यम से, उधर देव पूजा के माध्यम से भी कमर्शलाइज कर दिया, इधर गुरुजनों के निकट बैठे हैं तब भी अपने रोग शोक और व्याधि दूर करने की भावना, अपने भौतिक सुखों को पूरा करने की आकांक्षा, और शास्त्र का स्वाध्याय भी अंततः अपने धन पैसे और संसार के सुख कमाने की आकांक्षा। बताइए, तीन चीजें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मिली थी और अभी भी हैं हमारे हाथ में। पता नहीं कौन से हमने पुण्य पूर्व जीवन में अर्जित किए होंगे जिससे कि हमें और भगवान गुरुजन और धर्म का मार्ग बताने वाली जिनवाणी माँ, इन सब का सानिध्य मिला, लेकिन हम इनका अगर प्रॉपर यूसेज नहीं करें, प्रॉपर इनका हम उपयोग नहीं करें, तो ये हमारे जीवन को जो अच्छा बनाने वाली चीज़ें हैं वे भी अच्छा बनाने में हमें और कोई मदद नहीं कर पाएंगी। और हम देख रहे हैं इन दिनों कि ये सब होने के बावजूद भी हम अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा पा रहे। हमें इन तीनों को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि हमें इन तीनों से अब लाभ लेना शुरू कर देना है। जो व्यतीत हो गया वो व्यतीत हो गया, हमने उस पर विचार कर लिया और हमने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया कि हमने आज तक इन तीनों का सदुपयोग नहीं किया है। आज के ही दिन से और अभी इसी समय मैं अब सदुपयोग करूंगा, भगवान के चरणों में बैठूंगा तो रोज वीतरागता का पाठ लेऊंगा, मुनि जनों के चरणों में बैठूंगा तो समता का और संतोष का पाठ सीखूंगा, और शास्त्र से अगर मैं कोई बात ग्रहण करूंगा तो भेद विज्ञान ग्रहण करूंगा कि ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मुझे ये बात आज मालूम पड़ी, जिनवाणी माँ मुझे भेद विज्ञान सिखाए, मुनि जन के चरणों में बैठकर मैं समता और संतोष का पाठ सीखूं और भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठ करके और मैं वीतरागता का पाठ सीखूं। अगर ये हम सीखना शुरू कर दें तो तीनों चीजें आज हमें मिली हुई हैं और हम उन तीनों से अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और इतने ही नहीं, हम इनसे क्या पाठ सीखते हैं, यही पाठ तो सीखते हैं कि हम अपने जीवन को संयमित बनाएं, हम अपने जीवन में छिपी हुई सामर्थ्य को प्रकट कर सके। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन वो अनंत शक्ति हमारे ही अपने कषायों से, हमारे ही अपने पाप प्रवृत्ति से ढक गई है। ठीक ऐसे ही जैसे कि जमीन के अंदर पानी निरंतर बहता रहता है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, जब कोई ऊपर की परतें हटाता है और उस धार को ऊपर की तरफ ले आता है तब मालूम पड़ता कि अरे जिस जगह हम बैठे थे प्यासे उसी जगह तो नीचे पानी था, लेकिन ऊपर बहुत सी परतें जमी हुई थी, उन परतों को हटाया। इसी तरह मेरे अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन मेरे असंयम और मेरी इच्छाओं की प्रबलता, क्योंकि असंयम के अभाव में संयम होता।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते अरहंताहि जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत सारी बातें सीख ली। दृष्टि की निर्मलता या जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं वो जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक हम अपने जीवन को ना ज्ञान से अच्छा बना सकते हैं ना अपने किसी व्रत नियम और चारित्र के द्वारा अच्छा बना सकते हैं। बिना श्रद्धा का जो ज्ञान है और बिना श्रद्धा का जो आचरण है वो हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। अब हम अपने मन में उस सम्यक दर्शन की महिमा को एक बार विचार करें, जिससे कि हमें उस श्रद्धा को अपने भीतर जागृत करने का भाव भी उत्पन्न हो। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी इसके लिए हम बाहर से थोड़े बहुत प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्राप्त होना अकेले हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं है। जितना पुरुषार्थ हमसे बन सकता है वो हम कर चुके हैं। सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता या जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि उसे ही मिलती है जो संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, भव्य हो और जागृत उपयोग वाला हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जैसे किसी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए उसकी संहिता होती है कि इतना इतना होने पर ही आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन उसे प्राप्त हो सकता है जो संगी पंचेंद्री हो। हम सब संगी पंचेंद्री पर्याप्तक हैं, अपर्याप्त अवस्था तो है नहीं, और भव्य जीव हैं ये अपन मान के चल रहे हैं। ये भी हमने अपने किसी पूर्व पुण्य या कि भले कर्म से ये योग्यता प्राप्त की है। इतनी योग्यता हो जाने के बाद फिर सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठना, उनका सानिध्य प्राप्त करना और उनकी कही बात को ही सच मानना, अंतरंग में ये बात आनी चाहिए कि जैसा अपने जीवन को अच्छा बनाने का या ऊंचा उठाने का मार्ग भगवान जिनेंद्र ने बताया है सो ही सच्चा है। ये अंतरंग में बहुत गहरा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास हमारे लिए
उस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने में कारण बनेगा। तभी हम जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को समझेंगे। तब दूसरा कदम ये रखा जाता है कि जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा गया मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जो सात तत्वों का स्वरूप है, उनको ज्यों का त्यों समझना, तब जाकर के दृष्टि निर्मल होगी। ये भी हमने कर लिया है। हम संगी पंचेंद्री हैं, पर्याप्तक हैं, भव्य हैं, जागृत उपयोग वाले हैं, सोए हुए नहीं हैं, सब जागृत हैं। इतना ही नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठे हैं और जितना बनता है उतना तत्व का अभ्यास करते हैं। ये सब हमने अपनी किसी पूर्व पुण्य से सहज रूप से ये सब चीजें प्राप्त कर ली, जिनसे की दृष्टि निर्मल बनती है। वो जितने भी बाह्य कारण हैं वो सब हमारे पास हैं। जरा सा इस पे विचार करना कि मेरा अपना सौभाग्य कितना है। हमें तो थोड़ा सा धन पैसा कम मिलता है, हमें तो थोड़ा परिवार हल्का मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जरा विचार तो करें कि हमारे पास क्या चीज है। ये सब चीजें ऐसे आसान नहीं है प्राप्त करना, जिनको कि हमने आसानी से प्राप्त कर लिया है। संगी पंचेंद्री होना, पर्याप्तक होना, भव्य होना और जागृत उपयोग वाला होना, नहीं तो गाफिल हो और कहीं पड़ा हुआ हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलना दुर्लभ है और फिर बाद में तत्व की बात सुनना समझना, ये सब कितनी दुर्लभता है, वो हमें आसानी से प्राप्त होगी। अब इसके बाद ये सब तो हमें अपने पूर्व संचित कर्मों के फलस्वरूप मिल गया है। वर्तमान में पुरुषार्थ क्या करना है? वर्तमान में पुरुषार्थ इतना ही करना है कि इन सब से हम लाभ ले लें। और लाभ लेने का मतलब क्या है? हमारा इस सब पर विश्वास हो। मिल जाने के बाद भी हमारा विश्वास नहीं होता, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि सबके साथ ये मुश्किल है कि चीजों का महत्व उसके अभाव में मालूम पड़ता है, सद्भाव में चीजों का महत्व नहीं मालूम पड़ता। कभी हम अपने दांतों को नहीं गिनते रोज रोज के साबुत हैं कि नहीं। रोज गिनते क्या? जीभ से एक ये दांत, दूसरा, तीसरा, सब साबुत है, सब ठीक है, कभी नहीं, क्योंकि है वो तो। लेकिन जिस दिन टूट जाए एक हाथ तो बार बार जीभ वहीं चली जाती। क्या सबके साथ ऐसा होता है? जिस चीज का जब तक सद्भाव रहता है, माता पिता का सद्भाव है, तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन वे नहीं रहते तब फिर समझ में आता कि उनका कितना सहारा था। ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र हमें आसानी से मिल गए हैं, उनका क्या महत्व है? अगर ये हमें समझ में नहीं आए तो उनके प्रति हमारे मन में जो वास्तविक श्रद्धा है वो नहीं होगी, और जब तक वास्तविक श्रद्धा नहीं होगी तब तक दृष्टि निर्मल नहीं होगी। हमने बहुत अभ्यास और बहुत प्रयत्न करके इतनी आसानी से अपने अहंकार को हटाया, अपने अविवेक को हटाया, अपने भीतर जो भी 8 गुण होना चाहिए वो भी हमने प्राप्त कर लिए। अब हमारा आत्मविश्वास अगर जागृत ना हो अपने कल्याण के लिए, तो मानिएगा कि अभी हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं हुई, हमारा विश्वास अभी जमा नहीं है। तभी तो एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपन। जिसके मन में एक बार विश्वास जागृत हो जाता है उसके कदम फिर रुकते नहीं हैं, वो तो एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसमें लिखा है कि गृहस्थी में रह करके भी जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वो गृहस्थी के कामों को अत्यंत बेमन से करता है। बेमन से मतलब बिगाड़ डालता, ऐसा नहीं करता, तो व्यवस्थित ही ढंग से है, लेकिन अब उसमें रचता पचता नहीं है। कहता कि मेरा कर्तव्य है इसमें हर्ष विषाद करना नहीं है। उससे कोई गृहस्थी का काम अच्छा बन जाता है तो हर्षित नहीं होता, बिगड़ जाता है तो विषाद नहीं करता। कहते ठीक है, मेरी अपनी योग्यता के अनुसार मैंने किया, अब इस संसार को बढ़ाने वाले कार्यों में सिर्फ कर्तव्य मान के कर रहा हूं, और कैसे जल्दी से मैं इस सब से मुक्त हो जाऊं, ऐसी छटपटाहट भीतर आनी शुरू हो जाती है गृहस्थ में भी। अब अपने भीतर टटोल के देखना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति वास्तव में सच्ची श्रद्धा है, क्या अपने जीवन को अच्छा बनाने की ललक मेरे भीतर उत्पन्न हो गई है, क्या कैसी ललक, कितना महत्वपूर्ण है जो मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना ऐसा लगने लगा है, या अभी मैं अपने संसार बढ़ाने को ही प्रायोरिटी देता हूं। एक युवा पहुंच गया था साधु के पास कि मुझे संसार से मुक्त होने का उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तुम्हारे भीतर संसार से मुक्त होने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की ललक देखूंगा कि कितनी है, फिर बताऊंगा उपाय। कहते ललक तो मेरे भीतर बहुत है, जब तो आपके पास चल करके आए उन्हीं तो गायक हुआ था, मुझे तो बहुत इच्छा है कि मैं अच्छा बनूं और संसार से पार हो जाऊं। कहते अच्छा ठीक है, तो हम आज ही बता देंगे, लेकिन अभी चलो हम नदी में नहाने जा रहे हैं, फिर नहा धो के आएंगे और फिर जरा पूजा पाठ करके फिर तुम्हारी बात पर चर्चा करेंगे। कहले हाँ चलो, वो भी चला गया साथ में। अब उसको तो तैरना आता नहीं था, लेकिन बाबा जी ने कहा कि सुनो हमारे साथ थोड़े नदी में नहाओ, हम तुम्हें सब सिखा देंगे और डूबने का डर मत करो, हम तो हैं साथ में। और ले गए उसको गहरे पानी में, लेके चले गए बाबा जी। वो कह रहा कि नहीं, और ये लेते ही चले जा रहे, और इतने ही नहीं उसको पकड़ करके और डुबाने लगे पानी। अब वो तो और घबराया कि हम तो अच्छे भले और इनसे संसार से पार होने का उपाय पूछने आए थे, ये तो हमें बिल्कुल ही पार लगा रहे हैं, प्राणी लेते हैं क्या, बाबा जी हैं। अब उन्होंने तो उसको डुबा दिया, बिल्कुल सांस लेना उसको मुश्किल हो गया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड हड़बड़ा रहा वो भीतर पानी के, लेकिन इससे पहले कि उसके प्राण निकले, बाबा जी ने उसको फिर ऊपर कर दिया। उसने जोर से गहरी सांस ली और कहा, बाबा जी मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि जब पानी के भीतर डूबा था तब तेरे मन में कौन सी इच्छा थी, क्या आ रहा था मन में? बोले मन में तो और कोई बात नहीं थी, न संसार के सुखों की बात थी, न किसी और चीज की बात थी, बस एक ही ललक मेरे भीतर थी, एक ही बात मेरे भीतर थी कि एक सांस मिल जाए मुझे। बाबा जी ने कहा कि आज तक तेने 20-25 बरस तक कितनी सांसें ली होगी, कभी उनका महत्व तो समझा? आज एक सांस का महत्व तो समझ में आया। इसी तरह 25 बरस हो गए होंगे सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में माथा टेकते हुए, जिस दिन अपने जीवन को अच्छा बनाने की या उनके जैसे बनने की ललक पैदा हो जाएगी, उस दिन मैं बता दूंगा रास्ता। रास्ता मुझे फिर बताने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप चल पड़ोगे उस रास्ते पर। जैसे तुम एक सांस के लिए कितना प्रयत्न कर रहे थे, ऐसे ही अगर तुम्हारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने की इतनी गहरी इच्छा जागृत हो जाए, तो फिर किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कदम उस जीवन को अच्छे बनाने के रास्ते पर निकल जाएंगे। आत्मविश्वास अपने आप जागृत हो जाएगा। क्या ऐसी अपने जीवन को अच्छे बनाने की ललक हमारे भीतर है? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। दृष्टि की निर्मलता का महत्व समझ में आने पर हमारे भीतर ये बात आए बिना नहीं रहेगी। अभी तो हमने सिर्फ सुना है कि सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है, उसकी बड़ी महिमा है, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा सम्यक दर्शन होता, 7 तत्वों के अभ्यास से होता है, भारी चर्चा करते हैं अपन। लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने की सचमुच मेरे भीतर बात आई है कि नहीं आई है, या कि सिर्फ बातों बातों का ही जमा खर्च है? अगर आ गई है तो मैं रोज रोज अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तड़पड़ाऊंगा। अब मैं जहां मेरा जीवन गड़बड़ में पड़ता है वहां से अपने आप बच जाऊंगा, और जहां अच्छा बनता है उस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। ऐसा आत्मविश्वास, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विश्वास हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने वाला होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की महिमा लिखते हुए क्या लिखा हुआ है? यदि पाप अनुरोध हो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अत पापाश्रवो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। अपन क्या कहते अपनी भाषा में कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अरे भाई अगर अच्छा बेटा उत्पन्न हो गया है, कुलवंत है, चारित्रवान है, तो उसके लिए संपत्ति इकट्ठी करके काय को जा रहा है, वो तो खुद अपने हाथों से कमा लेगा, उसको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। वो कहते कि अगर कपूत है, संपत्ति मिटाने वाला है, तो काय को जोड़ के रख जा रहे, उसको तो 2 दिन में मिटा देनी है। ऐसे यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे कि यदि पाप निरोध हो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अगर हमारे पाप का आश्रय रुक जावे तो फिर और दूसरी संपदा की क्या आवश्यकता। और पापों का आश्रय अर्थात जीवन को बुरे बनाने वाले रास्ते पर हम चलना बंद कर दें, यानी हमारे भीतर से मिथ्यात्व हट जावे, तो फिर और दूसरी संपदा की क्या आवश्यकता। अत पापाश्रमोस्तन अन्य संपदा किम प्रयोजनम, आपके पास बहुत वैभव हो, बहुत धन पैसा आपने जोड़ के रखा हो, लेकिन निरंतर पापों से आपके आपका जीवन मलिन हो रहा है, तो उस संपदा क्या कर लेगी आपका, आपका भला नहीं कर पाएगी वो संपदा, ऐसा कहना चाहिए। तो हम संसार की संपदा जोड़ करके रखते हैं और पाप हमारे निरंतर हमसे लिप्त होते चले जा रहे हैं, तो वो संपदा हमें क्या कल्याण करने में मदद करेगी नहीं करेगी। और अगर एक बार सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान और सम्यक दर्शन की महिमा समझ में आ जावे और वो हमारी दृष्टि निर्मल हो जावे तो फिर ये संसार की संपदा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए लिखा हुआ। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, शायद बात समझ में आए, क्योंकि इस चीज का महत्व जब हमारे समझ में आएगा तभी जाकर हमारे मन में उसको प्राप्त करने की ललक होगी, वरना तो हम जो कर रहे हैं उसी को करते चले जाएंगे। दृष्टि की निर्मलता के बिना सब कुछ कुछ भी करते रहो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। आचार्य अभी अपन पढ़ रहे हैं एक ही भाव स्तोत्र, और उसी में आएगा वादिराज महाराज इतनी बड़ी बात कहते हुए पाए जाते हैं कि शुद्धे ज्ञाने सुचिनि चरिते सत्यपि त्वय नीचा भक्तिर्नोचेद अनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्योद्घाटम भवति गतम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदृढ महा मोह मुद्रा कवाटम। हे आपके पास अच्छो ज्ञान सुधरे रहो कछु काम को नहीं है। बताओ शुद्धे ज्ञाने सुचिनि चरिते बड़े चारित्रवान हुआ, बड़े व्रत नियम आपने किए हैं, सो रखे रहो अपना चारित्र अपने पास। अरे बड़ा आश्चर्य है, आप कह रहे हैं कि ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, चारित्र से कुछ नहीं होने। बिल्कुल है, शुद्धे ज्ञाने सुचिनि चरिते सति अपि अनीचा भक्तिर नोचेत। अगर जिनेन्द्र भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है तो हमारा ये सारा ज्ञान और व्रत नियम इत्यादि हमारे जीवन को बहुत ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, हमारे पापों के आश्रय को नहीं रोक पाएंगे। पापों के आश्रय को रोकने के लिए तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व और अपने अनंतानुबंधी कषाय जिसके माध्यम से हमारे दृष्टि में मलिनता आती है उसे हटाना पड़ेगा और दृष्टि की निर्मलता को अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। ये आचार्य भगवंतों ने इस तरह, क्योंकि भक्ति तो या श्रद्धा तो चाबी है किस ताले को खोलने की, कहते मोक्ष के द्वार पर जो कपाट लगा है उसमें जो ताला लगा है वो मुंह का ताला लगा है, उस मुंह के ताले को खोलने के लिए तो भक्ति और श्रद्धा रूपी चाबी की जरूरत है। वंचिका कुंची के यम कुंची लाओ, चाबी लाओ तब खुलेगा ताला। ना ज्ञान से किसी ट्रिक से नहीं खुलने वाला, ना आपके व्रत उपवास से खुलने वाला ताला, ताला तो खुलेगा मुंह का चाबी से, भक्ति की चाबी से। जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से जो है पोथी पत्रा सब बंद कर दो और व्रत नियम बिल्कुल नहीं करो। आप हमारे ऐसा अर्थ ले लोगे तो बहुत झगड़े में पड़ोगे। ज्ञान भी हासिल करें, तत्व का अभ्यास भी करें, व्रत नियम भी करें, जरूर से करें, लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने के उद्देश्य से करें, अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से करें। भाई ये दृष्टि तो होनी चाहिए। जहां आत्मकल्याण का उद्देश्य नहीं है, जहां वीतरागता की तरफ बढ़ने का लक्ष्य नहीं है, वहां पर हम चाहे कितने ज्ञान हासिल करने कर तो रहे हैं लोग, कितना ज्ञान सो संसार बढ़ाने वाला ज्ञान हासिल करने से क्या होगा। आत्मज्ञान तो सच्ची श्रद्धा के साथ होगा, और करते तो हैं बहुत लोग, महीनों महीनों जो है उपवास करते हैं, महीनों महीनों और धूनी रमा करके बैठते हैं, अग्नि के बीच में बैठते हैं और एक पैर पे खड़े होकर साधना करते हो, जमीन के भीतर घुस के साधना करते, सो करो कहते। लेकिन अगर आपके भीतर सच्चे देवगुरु शास्त्र के स्वरूप की प्राप्ति की भावना ही नहीं है, अपने आत्म कल्याण की सिर्फ थोड़ा से चमत्कृत करने की आपके भीतर भावना है, तो चमत्कृत तो हो जाएंगे लोग, लेकिन आपके आत्म कल्याण की भावना के द्वारा के बिना किया गया सारा त्याग तपस्या और ज्ञान सब कोई कार्यकारी नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, विद्या व्रतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सति सम्यक्ते बीजा भावे तरोर्यो। विद्या अर्थात ज्ञान और व्रत, संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, ज्ञान और चारित्र की शुरुआत, संभूति उसकी वृद्धि और उसका फल तब प्राप्त होता है जब साथ में सच्ची श्रद्धा हो। इतना महत्व है सच्ची श्रद्धा। अब गीत गाएंगे सम्यक दर्शन के, ताकि इसलिए गाएंगे जिससे कि ललक उत्पन्न हो हमारे भीतर, कह रही इतनी बढ़िया चीज है मुझे प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं जो कि इस तरह सम्यक दर्शन की महिमा बताते हैं कि हमारे भीतर उसकी प्राप्ति का उपाय आ जाए। और उदाहरण दे के समझाते कि देखो भाई, कोई भी वृक्ष तब उत्पन्न होता है, तब बड़ा होता है, फल फूल वाला होता है जब उसका बीज होवे तब, तो बीज के अभाव में जैसे न वृक्ष की उत्पत्ति होती है, न वृद्धि होती है, न वो बड़ा होता है, न उसमें फल फूल लगते हैं, बीज ही नहीं है तो क्या होगा। तो कहते सम्यक दर्शन तो बीज के समान है, वो होगा तो हमारे ज्ञान और आचरण में वृद्धि होगी, उसमें फल लगेंगे। फल काय के लगते हैं? वैराग्य के फल लगते हैं। श्रद्धा का पेड़ लगाओ तो वैराग्य के फल लगते हैं, लेकिन श्रद्धा ही ना हो तो कहां से फल लगेंगे? उसमें ना ज्ञान का फल लगेगा, ना चारित्र का फल लगेगा, क्योंकि बीज का तो अभाव है। इसलिए ऐसी श्रद्धा को अपन को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। रोज सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठते हैं अपन, जरूर से बैठे, व्रत उपवास नियम करें, तत्व का अभ्यास करें, लेकिन दृष्टि क्या रखें? मेरे आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं। ले पूरा आधे घंटे का अपन ने ब्रीफ कर लिया, क्या समझा अपन ने? अब जो कुछ भी मुझे करना है, ज्ञान हासिल करना है, व्रत उपवास करना है, मेरी एक ही दृष्टि है, मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे ये सारी चीज करनी, संसार बढ़ाने के लिए नहीं करनी। अब तो संसार घटाऊंगा, अपने जीवन को निर्मल बनाऊंगा, ये अगर दृष्टि है, ना मुझे कोई बाह्य वैभव चाहिए, ना मुझे कोई यश ख्याति चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपने जीवन की वो वास्तविक दशा जो मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा अगर भाव आ जाए, ऐसा आत्मविश्वास और श्रद्धा जागृत हो जाए। एक युवक था, वो एक साधु के पास उनके चरणों में जाकर के अपने को समर्पित कर देता है और वर्षों उन्हीं के पास रहता है, अत्यंत श्रद्धा उसके मन में उन साधु के प्रति रहती और पता नहीं क्या होता, उसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उससे बड़े बड़े काम जो कि किसी से नहीं हो सकते वो होने लगते हैं। कभी ऐसा मौका आया कि पानी में सब तो बहने लगे लेकिन वो पानी पर चल लेता था, ऐसी उसको सामर्थ्य प्राप्त हो गई। बड़े लोग चकित, और जब उससे पूछें कि भाई तुम्हें ऐसी चीज कैसे प्राप्त हो गई, तुम पानी पर चलने की विद्या कैसे सीख गए, तो कहता था कि गुरु की कृपा और मेरा तो इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं। एक बार जो है वो और दूसरे शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे कि ये शिष्य जो है गुरु का ये आगे बढ़ गया, गुरु ने इस पर बड़ी कृपा करी, हम सब लोगों पर कुछ भी कृपा नहीं है। गुरु की कृपा तो सब पर थी, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा है उसने उतनी कृपा से लाभ उठा लिया। सो बाकी शिष्यों को ईर्ष्या होती थी कि गुरु जी जो है इस पर ज्यादा कृपा करते, देखो तो पानी पे चल लेता है, अब इसको एक आध दिन अपन ऐसा करो कि जिसमें ये यहां से पूरा ही हो जावे। ऐसी बहुत जल्दी अपने अंदर भाव आ जाता है, दूसरे को मरते देख करके आता है सहज रूप से। अपनी लकीर बड़ी करवे की चिंता होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी बड़ी करने की जो भावना है वो दृष्टि की निर्मलता नहीं है। आज तक अपन ने यही किया है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किस किस का जीवन अपन जो है और मुश्किल में डाले हुए हैं, सिर्फ अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं कि हम अच्छा बनाने जा रहे हैं। नहीं भाई, जो अपने जीवन को अच्छा बनाएगा उसके द्वारा तो दूसरे का जीवन भी बहुत ऊंचा उठेगा। उन शिष्यों ने क्या किया, आश्रम में आग लगा दी, आग लगा दी और सब जने बाहर आ गए। और वो शिष्य जो है जब धीरे से बाहर निकलने लगा तो उससे कहा कि हम देखें तुम्हारे ऊपर कितनी गुरु की कृपा है, तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, जब तुम इस आग में से और सारा सामान आश्रम का बाहर निकाल के ले आओ। और वो तो आंगन फांगन जाकर के उसने अपने गुरु का नाम लिया और सब सामान बाहर निकाल लाया। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य, कहने लगे तुम वहीं बैठे रहो उस कमरे में तब हम जाने। अब ये तो पूरी तरह से उसको कि समाप्त ही हो जावे ऐसी इच्छा थी इनकी, लेकिन वो उसके भीतर गुरु का नाम लेकर के बैठा रहा, अग्नि चारों तरफ लगी रही, उसका कोई बिगाड़ नहीं हुआ। अब तो और प्रशंसा फैलने लगी सारा सब तरफ, तो और ये लोग ईर्ष्या से जले। एक बार उसको पहाड़ के नीचे ले ऊपर ले गए और कहा कि इस पहाड़ से नीचे कूद के बताओ तो जाने तुम्हारी श्रद्धा। उसने कहा इसमें कौन सी बात, लिया उसने गुरु का नाम और नीचे कूद गया, नीचे ऐसे बैठा मिला जैसे कि किसी ने उठा के बिठाल दिया हो। और मुश्किल में पड़ गए कि जितनी जितनी इसको अपन मुश्किल में डालते हैं उतना ये और चमत्कार इसके दिखने में आते। ये सारी चर्चा गुरुजी के पास पहुंची, अब गुरुजी भी गड़बड़ा गए। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है, अपन को जिस पर श्रद्धा होती है जरूरी नहीं है कि उसकी श्रद्धा भी उतनी ही प्रगाढ़। गुरुजी को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य मेरा नाम लेकर के इतने चमत्कार कर रहा है, मैं भी जाकर के देखूंगा। गुरुजी को भी विश्वास नहीं हुआ। अब आए गुरुजी, कहा कि भाई हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम पानी पे चल लेते, कहले आपकी कृपा। हमने सुना कि तुम आगे के बीच बैठे रहे फिर भी नहीं चले, कहते आपकी कृपा। हमने सुना है कि तुम पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गए, तुम्हें बिल्कुल कुछ चोट नहीं आई। उसने कहा आपकी कृपा गुरु जी। बोले लेकिन मुझे तुम पानी पे चल के बताओ तब मुझे विश्वास हो। अब बस वही बात कि पानी पर चलकर बताओ, इसका मतलब है कि गुरु जी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और बस उसने कहा गुरु जी इतना तो हमें आपकी बात समझ में आई, हम अभी पानी पर चल के बता सकते हैं, लेकिन अब हमारे अंदर एक ही बात आपके प्रति आ रही है। हमारा विश्वास तो आपके प्रति बना रहेगा, लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि मेरा विश्वास तो आपके प्रति है, लेकिन आपका विश्वास खुद आपके ऊपर नहीं है। आपकी कृपा से तो मैं सारी चीजें करता हूं, लेकिन आपको इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मेरी कृपा से ये सब हो सकता है। ना आपका मेरे ऊपर विश्वास है, ना आपका अपने ऊपर विश्वास है, तब तो आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। इस छोटी सी घटना को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में ऐसा ही हम सबके साथ में है। हम सब भी इतना आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं, हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। जैसे कि गुरुजी के शिष्य का तो गुरुजी पर विश्वास है, लेकिन गुरुजी का अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। नहीं, हमें अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो भैया उतनी ही श्रद्धा हमें अपने ऊपर भी होनी चाहिए, अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ सचमुच मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के सहारे अपने जीवन को ऊंचा उठा लूंगा। कितनी भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास ना हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करेगा वो? श्रद्धान मेरे भीतर उत्पन्न होगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र सिर्फ निमित्त बनेंगे। आज तक हमने उनका सानिध्य तो प्राप्त किया, लेकिन उनके सानिध्य से अपना आत्मविश्वास जागृत नहीं किया। उन पर तो हमने भरोसा किया, लेकिन अपने ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहा। भाई ये चीज अपन को अपने जीवन में और विचार करना चाहिए और अपना आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए कि हाँ सचमुच मैं चाहूं तो ठीक है, मेरा पूरा जीवन ऐसे निकल गया व्यर्थ, लेकिन मैं आज ही चाहूं और अभी चाहूं तो अभी से मैं अपने जीवन को और अच्छा बना सकता हूं। ऐसा हमारे भीतर जब आत्मविश्वास जागृत होगा, ये आत्मविश्वास ही इसी की महिमा है, ये हमारे भीतर एक बार पैदा हो जाता तो हमारा जीवन अच्छा बनना शुरू हो जाता। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें, सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके जिसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है वही अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लेता है, अच्छा बना लेता। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग ऋषियों में रच खच कर कापिल निद्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के कंटक पथ में विष कंटक होता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम करता जीवन कर करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर जाला
त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु प्रणाम। मिथ्या तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भाष विको भानु शिव कानी है। जावाणी के जानते सूर्य लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे।